ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। जन्मतां स्वकृता कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः तदीयन्तस्तहि अभद्राणि विजनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 7 अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 39 पीछे दोहराइए। दृष्टवा तेषां मिथुनाम् अज्ञानात्मा तं नृप एतादिषु हर्यर्च दृष्टवा देखकर तेषां ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में मिथ पारस्परिक नृणाम मानव समाज का अज्ञान आत्मताम परस्पर अनादर पूर्ण व्यवहार सात अपमान नृप हे राजा त्रेता आदिशु त्रेतायुग तथा अन्यों में हरेह भगवान का अर्चा देव पूजा मंदिर में क्रियाय पूजा विधि चालू करने के लिए कवि भी विद्वान पुरुषों द्वारा कृता किया गया। धन्यवाद पढ़ता हूँ श्री बहुपाद द्वारा। श्री बहुपाद की मेरे पीछे दोहराइए। हे राजन, जब ऋषियों मुनियों ने देखा कि त्रेता युग के प्रारंभ में ही परस्पर अनुदार पूर्ण व्यवहार चालू हो गया तो मंदिर में अर्च विग्रह की साज सामग्री सहित पूजा का सूत्रपात हुआ। अब परे पढ़ता हूं श्री प्रभुपाद द्वारा ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 52वें श्लोक में कहा गया है, कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायां युतो मखः द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल मिलता था वही कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करने से प्राप्त हो सकता है। सतयुग में हर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बड़ा चढ़ा होता था और महापुरुषों के मध्य कोई द्वेष नहीं होता था, किंतु धीरे धीरे युग की प्रगति के साथ भौतिक कलमश के कारण ब्राह्मणों तथा वैष्णवों तक में अनादरपूर्ण व्यवहार प्रकट होने लगा। वस्तुतः प्रगत वैष्णव का आदर विष्णु से भी अधिक किया जाता है, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधनम सपरम। वस्त्र प्रकार के पूजन में विष्णु पूजन सर्वपरि है। तस्मात् परतरम देवी दरिया नाम समर्चनम, और विष्णु पूजन से बढ़कर भी वैष्णव पूजा है। पहले सारे कृत्य विष्णु के लिए संपन्न किए जाते थे, किंतु सतयुग के बाद वैष्णवों में अनादरपूर्ण बर्ताव के लक्षण दिखने लगे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, वैष्णव वह है जो अन्यों को वैष्णव बनाने में सहायक बनता है। नारद मुनि ऐसे उदाहरण है जिन्होंने अनेक लोगों को वैष्णव बनाया है। ऐसा शक्तिमान वैष्णव जिसने अन्यों को वैष्णव बनाया है पूज्य है, किंतु भौतिक कलमश के कारण कभी कभी सामान्य वैष्णव का कनिष्ठ वैष्णव अनादर करते हैं। जब ऋषियों ने यह कलमश देखा तो उन्होंने मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा प्रारंभ कर दी। यह पूजा त्रेता युग में प्रारंभ हुई, द्वापर में विशेष रूप से प्रमुख थी। द्वापरे परिचर्याया लेकिन कलयुग में अर्च विग्रह की पूजा की उपेक्षा की जाती है, अतः हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन अर्च विग्रह पूजा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई मंदिर या अर्च विग्रह न स्थापित करके संकीर्तन आंदोलन का व्यापक सूत्रपात किया, अतः कृष्ण महामानवत का अधिकाधिक वितरण करना चाहिए, इससे संकीर्तन आंदोलन को बल मिलता है। जब भी अर्च विग्रह पूजा की संभावना हो तो हमें अनेक केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन हमें दिव्य साहित्य के वितरण पर अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि इससे लोग कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख हो सकेंगे। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 47वें श्लोक में कहा गया है, अर्चाया मेव हरे पूजा ये सदे ते न तद भक्तेषु चानेषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। ऐसा व्यक्ति जो मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा में निष्ठापूर्वक लगा रहता है किंतु भक्तों या सामान्य लोगों से व्यवहार करना नहीं जानता, यह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। प्राकृत भक्त या नवदीक्षित भक्त भौतिक पद पर ही रहता है, वह शुद्ध भक्त के कार्यों को पहचान नहीं पाता। वस्तुतः ये देखा गया है कि कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य का प्रचार करने वाला अधिकारी भगवत भक्त भी कभी कभी नवदीक्षित भक्तों की आलोचना का शिकार बनता है। ऐसे नवदीक्षित भक्तों का वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया है, सर्वप्राणी सम्माना समर्थाना अवज्ञा समर्था धीमतां तु भगवत प्रति में पात्र मित्या। जो अधिकारी भक्तों के कार्यों का सही सही मूल्यांकन नहीं कर पाते, उनके लिए अर्च विग्रह पूजा ही आध्यात्मिक गलती का एकमात्र साधन है। चतन चरतामृत में अंत लीला में 7वें अध्याय के 11वें प्यार में कहा गया है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं कार परिवर्तन, भगवान द्वारा अधिकृत हुए बिना कोई समग्र संसार में भगवान के पवित्र नाम का उपदेश नहीं दे सकता, किंतु जो भी भक्त ऐसा करता है तो उस अधिकारियों द्वारा आलोचित होता है, उनके लिए अष्ट विग्रह की पर्वत संस्तुति की जाती है। ओम ज्ञान तिमरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप नरेन्द्राकी स्वपदं पूजं वंदेहं श्री गुरु श्रीपादकमलं श्री गुरु नमेष्टमाश्च श्री रूपं साधुजातं सहगं ब्रह्मनाथं तं तं सजीवम् साधवैतं साधुतं कंचन सहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्ण बादां सहगंगा श्री शाखानंदिताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम
नमो विष्णु महाराज कृष्ण वरिष्ठाय भूतृष्णुते भक्ति वेदांत स्वामी नमः नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शृंगवादी पाशादिदेशकारिणी हरे कृष्ण। हे राजन, जब ऋषि मुनियों ने देखा कि त्रेता युग के प्रारंभ में ही परस्पर अनुदारपूर्ण व्यवहार चालू हो गया तो मंदिर में अच विग्रह की साज सामग्री सहित पूजा का सूत्रपात हुआ। यहां चर्चा आ रही है कि जो अर्च विग्रह की सेवा है उसकी बिगनिंग कैसे हुई। इसमें प्रभुपाद जी पर्पट में बहुत बढ़िया बात लिख रहे हैं जो हमें समझनी चाहिए। लिखा है कि सतयुग में आध्यात्मिक जीवन बहुत एडवांस था। नंबर एक। नंबर दो, जो महाभागवत हैं, जो महावैष्णव हैं, जो वैष्णव हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उनमें आपस में वाद विवाद नहीं था, आपस में द्वेष नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी। मतलब दे वर वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड कंड्यूसिव टू ईच अदर। एक प्रेम का भाव था। परंतु क्या होता है कि कुछ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट हैं जो छूटती नहीं है, तो उस लेवल पे आकर भी कभी कभार किसी किसी के मन के अंदर जो है ऐसा भाव प्रकट हो जाता था। तो यहां जो है बाजी लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों तक में अनादर पूर्ण व्यवहार प्रकट होने लगा। इसकी चर्चा आज हम करेंगे इन रिस्पेक्ट टू आतिरोभाव किसका है। अग्रेश्वर पंडित के आतिरोभाव के अंदर जो है हम एक इसी कंटेक्स्ट में छोटा सा चर्चा करेंगे। कथा करते हैं देवानंद पंडित। भागवतम की कथा चल रही है। श्रीवास पंडित आए तो उनका आदर मान सम्मान नहीं किया गया, अपराध हो गया। मीन्स वैष्णवों का आदर मान सम्मान करना एक असेंशियल एस्पेक्ट है भक्ति में आगे बढ़ने का। यह बात यहां पर स्पेसिफाई की जाए। यहां प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर सेंटेंस यूज कर रहे हैं। वस्तुतः प्रगत वैष्णव का आदर विष्णु से भी अधिक किया जाना चाहिए। क्यों, किस लिए, वाई सो? किस लिए वैष्णव का आदर मान सम्मान यहां प्रभुवादी लिख रहे हैं कि भगवान से भी ज्यादा करना चाहिए, तो ऐसा क्यों है? वाई इट इज सो? दो प्रकार के भागवत हैं। एक भागवत जिसे हम पढ़ रहे हैं और दूसरे भागवत जो कि वैष्णव आचार्य हैं जो हमें भागवत का ज्ञान देते हैं। अगर वो वैष्णव ना हो तो ज्ञान कौन देगा? हम लोग स्कूल में जब हुआ करते थे, आई रिमेम्बर वेरी वेल, छोटे होते थे स्कूल के अंदर, तो हमारी एक कविता की किताब थी। उस किताब में एक छोटा सा एक दोहा हुआ करता था, गुरु गोविंद दोहु पढ़े आगे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद देव बताया कि पहले वो गुरु के चरण छूता है फिर भगवान के चरण छूता है। इसलिए कि भगवान को उसने जाना ही गुरु के माध्यम से। बहुत सारे लोग जो यहां बैठे हुए हैं, पहले भगवान, उनकी लीलाओं, उनके अवतार, उनके नाम रूप गुण के बारे में नहीं जानते थे। जब वो मंदिर में आए, दर्शन किए, आकर्षित हुए, कथा सुनी, तो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अट्रैक्शन जो है भगवान के प्रति जो बढ़ा, जो आज इतने ब्रह्मचारी बने, आज इतने लोग भक्त बने, वो किसके माध्यम से बने? शिक्षा गुरु के माध्यम से, दीक्षा गुरु के माध्यम से, अर्थात जो लोग उनको जो है मंदिर के अंदर भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के जो उपदेश हैं उनका वर्णन कर रहे हैं, भगवान के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, उससे उनका जो है भगवान के प्रति ज्ञान बढ़ा और ज्ञान बढ़ने के बाद आकर्षण बढ़ा। तो आज भक्ति का एक प्रवाह देखने को मिलता है। जन्माष्टमी होती है, गौर पूर्णिमा होती है, नरसिंह चतुर्दशी होती है, तो सुबह मंगल आरती में कितने भक्त होते हैं? काउंटिंग है कोई? कितने? 2000। सवेरे मंगल आरती में कितने भक्त होते हैं फंक्शन वाले दिन? 1000। और आज से 15 साल पहले जब हम 63 नंबर में थे तब कितने हुआ करते थे? 50 लोग, 100 लोग मैक्सिमम। ये जो बढ़ोतरी हुई है, ये जो एक गिनती बढ़ी है, जो लोग भक्ति की तरफ सवेरे 4 बजे आके मंगल आरती में बाहर खड़े गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं जन्माष्टमी को किसी तरीके से अंदर जाए, ये कैसे हुआ है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ये भागवत का ज्ञान दिया गया है, लोगों ने उसको समझा है, सुना है और अब उनका आकर्षण बना। इसलिए जो है स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रगत वैष्णव का आदर विष्णु से भी अधिक किया जाना चाहिए। समस्त प्रकार के पूजन में विष्णु पूजन सर्वोपरि है। इसका क्या अर्थ है? कि मुक्ति प्रदाता जो है स्वयं विष्णु है और कोई मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना। कि अगर आप जो है भगवान विष्णु की पूजा करते हो तो कर्मों के बंधन से छूट जाते हो, और अगर आप जो है किसी देवी देवता की पूजा करते हो तो आप कर्मों के बंधन में फंसे रहते हो। तो यहां जो है स्पष्ट कहा जा रहा है कि अब इसमें एक बात आई, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, कि विष्णु पूजन से बढ़कर भी वैष्णव पूजा। तो वैष्णव कौन है? हम वैष्णव वैष्णव की चर्चा कर रहे हैं तो वैष्णव कौन है? हु इज अ वैष्णव? इसमें जो है एक एक उदाहरण है, वैष्णव है जो अन्यों को वैष्णव बनाने में सहायक है। परफेक्ट में दो बात ये लाइन लिख रहे हैं। वैष्णव के कुछ और भी डेफिनेशंस हैं, वैष्णव कौन है इसको कैसे हम एक्सप्लेन करें? जिसने माथे पे जो है तिलक लगा लिया है, जैसे हमने लगा रखा है सबने, तो वो तिलक लगाते ही वो वैष्णव की कैटेगरी में आ जाता है। वैष्णव का सबसे बड़ा गुण क्या है? ये सब ये वैष्णव है, तुरंत आप उसके ऊपर फिंगर पॉइंट आउट करते हो कि ही इज अ वैष्णव। कुछ 26 क्वालिटीज की बात होती है, 39 क्वालिटीज की बात होती है, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। एक मुख्य गुण जो वैष्णव के हैं वो है विनम्रता, विनयशीलता, शरणागति। विद्या विनय संपन्न है, मतलब जब विद्या प्राप्त कर लेता है तो विनयशीलता से संपन्न हो जाता है, भगवान के शरणागत हो जाता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भगवान के शरणागत हो जाता है उसमें विनम्रता आ जाती है, विनयशीलता आ जाती है। वैष्णव का एक और गुण भी है जो यहां इसका बेस है, इस सेंटेंस का जो बेस है कि वैष्णव वो है जो अन्यों को वैष्णव बनाने में सहायक होता है। बेस क्या है? परा दुखा दुखी, ये दूसरे के दुख में दुखी है। और दूसरे का दुख क्या है? दूसरे का दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। ये जो चार दुख हैं इनसे कैसे छुटकारा पाया जाएगा, इसकी जो आपको ज्ञान देता है, इसके मार्ग में जो चलाता है वो वैष्णव है, क्योंकि आपके दुख में दुखी है। अब आती है बात कि द्विज क्या है, विप्र क्या है, ब्राह्मण क्या है और वैष्णव क्या है। ये चार शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। द्विज का अर्थ है जिसका उपनयन संस्कार हो गया है। हम कहते हैं कि हमने ब्राह्मण घर में जन्म लिया है। भगवान जब भगवत गीता में कहते हैं कि मैंने गुण और कर्मों के अनुसार रचना करी है, चतुर्वर्ण न्यास सिस्टम गुण कर्म विभाग, व्यक्ति को पूर्व जन्म के कर्मों के फलों के अनुसार इस जन्म के अंदर एक पर्टिकुलर परिवार में जन्म मिलता है। कर्म वहां किए हैं, जन्म इस परिवार में मिलना है, या ब्राह्मण के परिवार में ले रहे हो, क्षत्रिय के परिवार में ले रहे हो, वैश्य के परिवार में ले रहे हो, शूद्र के परिवार में ले रहे हो। पर ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने के बावजूद आपके पास जो है ये चार कर्म करेंगे तब आप एफ्लिक्ट होंगे, वरना नहीं। तो सबसे पहला है उपनयन संस्कार, तो द्विज बनता है, मतलब उसका दूसरा जन्म अब हुआ है। अब उसने जो है छह प्रकार के कर्मों में निपुण हो गया, षट कर्मों निपुणो मंत्र तंत्र विशाल। छह प्रकार के कर्म क्या है जिनमें वो एक्सपर्ट होता है? हम कहते हैं भाई हमें यज्ञ कराना है, हवन कराना है, पूजा करानी है, कर्मकांड कराना है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो किसी ब्राह्मण को बुला के लाइए। तो आप उस ब्राह्मण में क्या क्वालिटी देखना चाहते हैं, क्या क्या उसमें गुण होना चाहिए? यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ज्ञान देना और ज्ञान लेना, दान देना और दान लेना, ये छह गुण उसके अंदर होने चाहिए, तब वो जो है विप्र कहलाता है। अब वो विप्र से उठ के जो है जब ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है, भगवान का ज्ञान प्राप्त करता है, अब उसमें विनयशीलता आनी शुरू होती है, विद्या से संपन्न हो जाता है। ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चाहे छुपा के चाहे पंडिता संदर्शना, सब प्राणियों के अंदर भगवान के दर्शन करना शुरू कर देता है, किसी से भेदभाव नहीं करता, किसी से वैर नहीं करता, तब वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आता। और जब ब्राह्मण बनने के बाद वो भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है, विनयशीलता में परफेक्ट है, विनम्रता में परफेक्ट है, हम्बलनेस ह्यूमिलिटी हर गुण उसके अंदर आ जाता है, द्वेष नहीं करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, मोह समाप्त हो गया है, लोभ कम लोभ समाप्त हो गया है, सब गुण उसके अंदर, अवगुण सारे नष्ट हो जाते हैं, गुण आ जाते हैं, तब वो वैष्णव बनता है। तो ऐसा वैष्णव जो है आपको भगवान के सम्मुख ले जाने में सक्षम है। तो जितने भी वैष्णव आचार्य हैं इस लेवल पे हैं, जब उनसे दीक्षा ली जाती है तो आपका कनेक्शन भगवान के साथ परंपरा में कर देते हैं। नाउ यू आर इन द डिसिप्लिन सक्सेशन। मंत्र जब तो मैं पहले नहीं कर रहा था, पर अभी मेरा लाइन में कनेक्शन नहीं हुआ था, कि बिजली की फिटिंग तो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, परंतु इसकी वायर जो है वो मेन पोल के साथ अटैच नहीं हुई। जिस दिन अटैच हो जाएगी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए। अब इसके बाद जो है चर्चा आ रही है कि अर्च विग्रह की पूजा और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, दो बातें इसमें डिस्कस हुई। अर्च विग्रह की पूजा अगर परफेक्ट तरीके से हो रही है, लास्ट में लिखा है कि अर्च विग्रह की प्रबल संस्तुति की जाती है, इट इज ए मस्ट, और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी मस्ट है। हम लोगों को इन दोनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। वी आर नॉट एट दैट लेवल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू, ये कर लें या वो कर लें। हमारे लिए दोनों चीजें जो हैं इक्वलेंट हैं, दोनों चीजों की इक्वल वैल्यू है। अर्च विग्रह भी परफेक्ट तरीके से हो रही है, हरे कृष्ण महामंत्र को भी हम परफेक्ट तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपराध हो रहे हैं, बिगनिंग में अपराध होते हैं, बट वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट, बेस्ट ऑफ अर्च विग्रह पूजा एंड बेस्ट ऑफ महामंत्र का जप संकीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये जो इसमें सेंटेंस यूज हुआ है, दिस इज फॉर नियोफाइट्स, कि नियोफाइट्स जो हैं अर्च विग्रह की पूजा करने में सक्षम नहीं होते, ट्रेंड नहीं है, इसलिए उनके लिए जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, संकीर्तन करें, दैट इज ओके फाइन। पर जैसे जैसे व्यक्ति एडवांस्ड होता है, जैसे जैसे जो है परफेक्शन में आता है, तब देयर इज नो डिफरेंस, दोनों की इक्वलेंट वैल्यू है, दोनों में कोई भेद नहीं। रूपा जी ने इसमें एक बात और लिखी है कि संभावना हो तो हम अर्च विग्रह पूजा के लिए अनेक केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं। संभावना हो मतलब वी कैन कम टू दी परफेक्ट लेवल, परफेक्शन के लेवल पे आ जाए। और फिर साथ ही एक सेंटेंस यूज किया है कि हमें दिव्य साहित्य के वितरण पर बल देना चाहिए, कि दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम एक बॉम्ब को उसके घर में पहुंचा देते हैं, पता नहीं कब फटेगा, यू नेवर नो कि वेन विल दिस बॉम्ब एक्सप्लोड। और हमने अपनी लाइफ में इसको फटते हुए कई बार देखा। बहुत लोग आगे कहते हैं किताब पढ़ी थी जी, बड़े दिन से ध्यान नहीं दिया था, पर अब जो है एक दिन पढ़ी तो लगा कि कुछ है, अब चलना चाहिए। आई स्टिल रिमेम्बर, आज से एक महीना पहले की बात है, हमने एक क्लास करी और एक कीर्तन किया गुड़गांव में, बड़ी पॉश कॉलोनी है डीएलएफ2, तो लोगों को अच्छा लगा। तो आमतौर पे डॉक्टर्स जो हैं इंटरेस्टेड नहीं होते, पर जो कि डॉक्टर उसमें एक आए हुए थे आर्टेमिस हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, तो नेक्स्ट डे ही उसका फोन आ गया, क्योंकि तो मैं भी डॉक्टर हूं, वो भी डॉक्टर है, तो डॉक्टर होने के नाते थोड़ा सा वैसे भी आपस में जरा एक मतलब भाव मिलते हैं, थोड़े भौतिक भाव को मिलते हैं। तो उनका फोन आ गया कि प्रभु जी अगले महीने की 26 को मेरा बर्थडे है, एंड आई वॉन्ट ए रिपीटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम एट माई हाउस, ऐसा ही प्रोग्राम मेरे घर पे करिए, ऐसा प्रोग्राम मैं पहली बार करवाऊंगा, जो कायदे हैं नियम है कानून है मुझे बता दिए जाए ताकि मैं उनको फॉलो कर सकूं। तो भगवान के नाम में, भगवान के गुण में, लीला में, धाम में बड़ा अंतर है कि जो नास्तिक डॉक्टर्स होते हैं वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। और वहां पे हमने जो है उस प्रोग्राम में काफी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी और उनको भी बुक दी, तो वही बुक उन्होंने रात में पढ़ी, कथा भी सुनी, कीर्तन भी सुना और किताब भी पढ़ी, और अगले दिन ही चेंज आ गया, नेक्स्ट डे ही देर वॉज अ चेंज। तो बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया, और किताब जो है भगवद गीता रूपी बॉम्ब जो है वह एक्सप्लोड कर गया। आज चर्चा करेंगे। वक्रेश्वर पंडित के तिरुभाव दिवस के, तो पहली बात यह है कि वक्रेश्वर पंडित क्या कार्य करते थे, व्हाट वॉज हिज एक्सपर्टाइज, क्या एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट किस चीज के थे, एक बार श्रीवास ठाकुर के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया, वक्रेश्वर पंडित ने भावाधारिक में निरंतर 72 घंटों तक नृत्य किया, 72 आवर्स। कोई है 2 घंटे में नाच सके, 4 घंटे नाच सके, 72 आवर्स, नॉट ए शॉर्ट टाइम, परफेक्ट टाइम। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वक्रेश्वर मेरे पास तुम्हारे जैसा एक ही पंख है, यदि एक पंख और होता तो मैं निश्चित रूप से गगन में उड़ सकता। गायन व नर्तन में पारंगत वक्रेश्वर पंडित ने उन्हीं संकीर्तन मंडलियों जिनमें प्रारंभ से ही सम्मिलित हो गए थे, श्रीवास आनंद के नाटकों तथा जगन्नाथपुरी की वार्षिक यात्रा उत्सव में अपनी सेवा द्वारा सदैव चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते थे। वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है, कली काल में सुप्त जीवों को जागृत करने के हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भावनामृत वितरित करने के लिए अवतरित हुए, जब वे आए मृदंग एवं करताल में गर्जन सम महाघोष करने लगे, प्रेमाभाव में अंतर्लीन श्री गौरांग हरिबोल हरिबोल का विनाद करते हुए सबसे कृष्ण नाम लेने के लिए स्वर्ण बुझाएं अंबर की ओर उठाए, भगवान और हरि भावन मार्ग में नृत्य करते, उस समय वक्रेश्वर पंडित तथा अन्य भक्त भी भगवान के साथ नाचते। वक्रेश्वर पंडित के आशीर्वाद से देवानंद पंडित श्रीवास पंडित के प्रति किए गए अपने वैष्णव अपराध से मुक्त हो गए। तब श्री चैतन्य ने देवानंद पंडित को अपने निजी भक्त के रूप में स्वीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि श्री कृष्ण ने वक्रेश्वर पंडित के हृदय में अपना अधिष्ठान बना लिया है। जब श्री कृष्ण उनके हृदय में नृत्य करते हैं तो वक्रेश्वर पंडित स्वयं ही नाचने लगते हैं। जिस स्थान को भी वक्रेश्वर पंडित अपने संसर्ग से धन्य कर देते हैं वह स्थान समस्त तीर्थस्थलों से अधिक पवित्र तीर्थस्थान बन जाता है। वक्रेश्वर पंडित परमानंदपुरी स्वरूप दामोदर गाधर जगदानंद पंडित शंकर रघुनाथ वैद्य और रघुनाथ दास जाते किंचित महान भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की नवदीप लीला के प्रारंभ से ही उनका संग कर रहे थे। उन्होंने नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में निष्ठापूर्वक महाप्रभु की सेवा करी। वक्रेश्वर पंडित ने जगन्नाथपुरी में काशी विश्व भवन में गंभीरा के समीप ही श्री श्री राधाकांत के अश्वग्रह स्थापित किए। कवि कर्णपुर के कथनानुसार वक्रेश्वर पंडित चक्र चतुर्व्यूह में अनिरुद्ध के अवतार है। दो कंट्रास्ट आ रहे हैं। वक्रेश्वर पंडित ने उड़ीसा में गोपाल गुरु गोस्वामी तथा अनेक अन्य भक्तगणों की दीक्षा दी। गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य ध्यानचंद्र अपने ग्रंथों में कहते हैं, वक्रेश्वर पंडित तुंग विद्या सखी के अवतार हैं, श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक हैं तथा एक निपुण गायिका एवं नर्तकी हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। वक्रेश्वर पंडित तिरुभाव महामहोत्सव की बात ये चर्चा थोड़ी सी 5 मिनट के लिए हेरा पंचमी। हेरा किसे कहते हैं? हेरा 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 फेरी वाला है ना। हेरा शब्द इस्तेमाल किया है, साधारण व्यक्ति से पूछेंगे तो मिलेगा हेरा हेरा जो है हेरा फेरी में इस्तेमाल होता है। हेरा का अर्थ है देखना, टू सी, और पंचमी का अर्थ है पांचवा दिन। तो हेरा पंचमी जो है रथ यात्रा के 5 दिनों के बाद सेलिब्रेट की जाती है। क्यों की जाती है? कि भगवान जगन्नाथ ने अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी जी को छोड़ा है और वृंदावन चले गए हैं। वृंदावन कहां है? जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी का जो टेंपल है नीलाचल कहलाता है, द्वारका भी कहलाता है, और उड़ीसा टेंपल जो है वो वृंदावन कहलाता है। अब भगवान से विरह है लक्ष्मी जी का, वो उनको देखने के लिए उड़ीसा मंदिर में आती है। तो कहा था मैं कल आ जाऊंगा, एक दो दिन में आ जाऊंगा, परंतु पांच दिन हो गए अभी तक आए नहीं। तो कमिंग ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून टू उड़ीसा इज सेलिब्रेटेड एज हीरा पंचमी। लक्ष्मी देवी जी का उड़ीसा टेंपल में आना हीरा पंचमी के रूप में सेलिब्रेट होता है। उड़ीसा टेंपल का बड़ा ही यूनिक फेस्टिवल है। रथयात्रा फेस्टिवल के पांचवें दिन जो है लक्ष्मी जी बड़ी चिंतित हो गई है कि मेरा पति चला गया है। ने कहा है कि मैं थोड़ा एनवायरमेंट के चेंज के लिए जा रहा हूं, थोड़ा मौसम बदल जाए, थोड़ा मूड बदल जाए, थोड़ा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, थोड़ा पांच दिन हो गए हैं अभी तक आए नहीं। तो बड़ी एंशियस है, बड़ी चिंतित है कि उनके हस्बैंड जो है उनको साथ नहीं ले गए। और भगवान क्यों गए हैं? कि वृंदावन में लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है, वहां की रासलीला वहां की लीलाओं में नहीं आ सकती, क्योंकि वो रत्न जड़ित सिंहासन में बैठती हैं, ऐश्वर्यमयी है, और वृंदावन जो है माधुर्यमय। अब चार रात्रि बीत चुकी है, अब जो है लक्ष्मी जी बड़ी दुखित मन है। वो पांचवें दिन जो है उड़ीसा टेंपल जाती हैं जगन्नाथ जी को देखने के लिए, और जैसे ही वहां पहुंचती हैं उड़ीसा टेंपल के जो द्वार हैं बहुत जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाते हैं। शी इज नॉट अलाउड एंट्री। उड़ीसा डोर्स ऑफ द उड़ीसा टेंपल आर सडनली क्लोज्ड विद ए बैंग। बैंग मतलब जोरदार आवाज। अब वो बड़ा भारी हृदय लिए हुए वापस आते हैं, गुस्से में हैं। तो क्या करते हैं कि जो भगवान का रथ है नंदी घोष, उससे एक लकड़ी तोड़ते हैं, और जो हेरा गोहरी शाही एक छोटी सी स्वरण समझ लीजिएगा, उसके रास्ते जो है अपने पति को एक जिसे कहते हैं लेसन क्या बोलेंगे, पाठ पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते। अब लक्ष्मी जी का चैरियट आता है, अब इस इवेंट को जो है बहुत ही मतलब भक्त जो है उत्साहपूर्वक देखते हैं। अब लक्ष्मी जी को जो है वहां पर जब जाके खूब सुना सुनवाई होती है, खूब झगड़ा रहा होता है, खूब मतलब नाटक होता है, खूब पहिया सा। अब इस इवेंट के बाद जो है लक्ष्मी जी को वापस टेंपल में लाया जाता है, फिर हेरा गोरा शाही के रास्ते से लाया जाता है। अब जब जगन्नाथ जी अपने सेंटर में जाना चाहते हैं, जब अपने गर्भगृह में जाना चाहते हैं, तो उस काल हटा द्वार है एक, उसके ऊपर ब्लॉक लगा देती हैं लक्ष्मी जी और उनकी सखियां, और वहां पर जो है फिर खूब शब्दों के बांध चलते हैं, खूब झगड़ा होता है। तब तक होता है जब तक जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी जी को मना नहीं लेते। वो मान मनोवर चलता है, जब वो मना लेते हैं तब भगवान को अंदर एंट्री दी जाती है। इस उपलक्ष्य के अंदर ऐसा उल्लेख आता है कि साल में केवल एक बार जगन्नाथपुरी में रसगुल्ले का प्रसाद बांटा जाता है, मिठास भरा हुआ रसगुल्ले का प्रसाद बांटा जाता है। तो आज हीरा पंचमी है, अब यहाँ तो ऐसी कोई लड़ाई होनी थी, भगवान के साथ ना कर पा रहे हैं। हाँ रसगुल्ले बांट सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, रसगुल्लों की मिठाई हो सकती है। येरा पंचमी महामहोत्सव की काई गौर पे मनाते हैं।